नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कल निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग के लिए कोयला खंडों की नीलामी नीति कोल सेतु को स्वीकृति दी। इससे विभिन्न औद्योगिक उपयोगों और निर्यात के लिए कोयला खंडों की नीलामी के लिए एक नया माध्यम तैयार हो गया है। इसका उद्देश्य संसाधन की निष्पक्ष उपलब्धता और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।
2016 में कोल सेतु के माध्यम से जो नॉन पावर सेक्टर्स हैं, उसको एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड से ऑक्शन करने की व्यवस्था लाई गई थी। अब उसमें एक सेकेंड बड़ा रिफॉर्म किया गया। अब इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंड यूज, एनी यूजर कैन पार्टिसिपेट इन द कोल सेतु विंडो। अब कोल के एक्सपोर्ट को भी प्रमोट किया जा रहा है। इससे बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी इंडस्ट्री में।
श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के संचालन के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। उन्होंने कहा कि जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वर्ष 2026 के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी स्वीकृति दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय से नारियल उत्पादकों को बेहतर लाभ सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोल सेतु नीति को स्वीकृति देना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कोल सेतु नीति कोयले का सुचारू, कुशल और पारदर्शी उपयोग तथा सक्षम बनाने के लिए नया रास्ता खोलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल के वर्ष 2026 के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय नारियल किसानों की आय बढ़ाने के साथ खोपरा उत्पादकों को भी प्रोत्साहन देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय की दक्षिण मामलों की सचिव नीना मल्होत्रा ने बताया कि श्री मोदी अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर 15 से 16 दिसंबर तक जॉर्डन की यात्रा करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 16 दिसंबर को इथोपिया जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वाणिज्य दूतावास, पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतीय मामलों के सचिव अरुण कुमार चटर्जी ने बताया कि यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 17 दिसंबर को ओमान जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत और ओमान के बीच व्यापारिक संबंधों और आपसी संपर्क पर आधारित एक विशेष साझेदारी है। पूरा देश आज संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सुरक्षा कर्मियों और बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वर्ष 2001 में आज ही के दिन संसद पर आतंकी हमला हुआ था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य आज संसद भवन परिसर में बलिदानी सुरक्षा कर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र में जंगल की आग के वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ करना विषय को लेकर इसे अपनाया गया है। भारत द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को सदस्य देशों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है। इससे विश्व स्तर पर जंगल की आग के बढ़ते खतरे से निपटने की तत्काल आवश्यकता की वैश्विक मान्यता मिली है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य जंगल की आग के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वित कार्रवाई को सुदृढ़ करना है। निर्वाचन आयोग ने 8 प्रमुख राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की निगरानी के लिए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। पर्यवेक्षकों को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तैनात किया गया है। भारत और चीन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच पेचिंग में परामर्श बैठक हुई। इसमें द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक प्रगति की पुष्टि हुई है। विदेश मंत्रालय के पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने कल पेचिंग की 2 दिन की यात्रा संपन्न की। इस दौरान श्री घोष ने चीन के उप विदेश मंत्री सन वेडोंग से भेंट की। चेन्नई में स्क्वाश विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन मिस्र से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में हांगकांग का सामना जापान से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से हराया था। भारत लगातार दूसरी बार स्क्वाश विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।